بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں کاروبار کا رجحان کم ہے، اور پاکستان میں افراد بطور خاص نوجوان، اور وہ نوجوان جو کہ ایم بی ایز کر رہے ہیں یا بزنس ایجوکیشن میں ماسٹر یا بیچلر لیولز پہ انوالڈ ہیں، بدقسمتی سے ان میں سے 90% دے سرچ فار جابس، دے گو فار جابس، اور ان کے خواب یا ان کے ڈریمز، ان کی تعبیر یہی ہے کہ ان کو ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا ایک بینک میں ملازمت مل جائے، یا بالفاظ دیگر ان کو غلامی میسر آ جائے. پاکستان میں بہت کم رجحان ہے کاروبار کرنے کا، اور یہ پاکستان کی معاشی بدحالی کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے. کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ جن جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے معاشی ترقی کا ایک اہم ترین راز کاروبار ہے، بزنس ہے. وہاں پہ بزنس ڈوئنگ کا کلچر ہے، لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو ڈیولپمنٹ تھیوریز ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو تھیوریز ہیں، اس میں جان مینارڈ کینز کی تھیوری ہے، یا جو کمیونسٹ ماڈل ہے اکانومی کا، یا جو اور ڈیولپمنٹ کی تھیوریز ہیں، ڈاس کیپٹل ہے جیسے، یا ان میں سے ایک اہم ترین تھیوری، یا یوں کہوں کہ کامیاب ترین ماڈل جو اب تک دنیا نے دیکھا ہے، وہ شمپیٹرن انٹرپرینیورز ہے. جوزف شمپیٹر ایک آسٹرین اکانومسٹ تھے، جرمن آسٹرین اکانومسٹ، اور انہوں نے یہ ماڈل دیا تھا کہ اگر آپ وشیس سرکل سے باہر آنا چاہیں، اگر آپ غربت کے چکر سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے ملک کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ یا معاشی خوشحالی کے لیے لوگوں کو کاروبار کا رجحان دینا ہوگا. اور یہ تو اکانومسٹ نے تو بعد میں اس ماڈل کو ایکسپلور کیا، لیکن ہمارے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت پہلے جو ہے وہ متعارف کروایا اور اس پہ زور دیا، اور وہ خود ایک بہت مایہ ناز، بہت عظیم انٹرپرینیور تھے، اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ایک فیمیل انٹرپرینیور تھیں. تو آپ آج اس یہ بات نہیں کر سکتے کہ عورتوں کو کاروبار میں نہیں آنا چاہیے. ہاں، ان کی مردوں کے ساتھ ان کا میل جول کم سے کم ہو اور وہ انٹرپرینیورشپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، نہ یہ مجھ سے زیادہ متعلق ہے. بات یہ کریں گے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو کیسے اس طرف رغبت دیں کہ وہ بزنس کی طرف آئیں یا کاروبار کرنے کی طرف آئیں. دیکھیے، دنیا کی ڈیولپڈ ترین جو اکانومیز ہیں، پر کیپٹا انکم کے حساب سے کہیں یا ان کے انفراسٹرکچر سے کہیں، جو ان کا اربن انفراسٹرکچر ہے، یا ان کا جو روڈز کا نیٹ ورک ہے، یا ان کا جو ٹرانسپورٹیشن کا نیٹ ورک ہے، یا الیکٹریسٹی، گیس اور باقی فیسلٹیز ہیں، یا وہاں پہ جو علم ہے یا فن ہے، یا لوگوں کا جو معیار زندگی ہے، اس کے عنوان سے اگر کہیں تو جو ترقی یافتہ ترین اقوام ہیں، جیسے امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یا جرمنی ہے، یا فرانس، یا جاپان، یا اب جو ابھرتی ہوئی اکانومی ہے چائنا اور ملائیشیا، ان کی ڈیولپمنٹ کا اہم ترین راز بزنس ڈوئنگ کا کلچر ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ تمام غلام قوموں کا یہ ایک کامن کریکٹرسٹک ہے، کامن فیچر ہے بدقسمتی سے، کہ وہاں پہ جاب سیکیورٹی کا کلچر زیادہ ہے، اور اس جاب سیکیورٹی میں بھی لوگ پریفر کرتے ہیں ان جابز کو اندر جو اتھارٹی یا پاور ڈریون ہیں، جیسے گورنمنٹ کی جابز ہیں. جیسے لوگ اگر سی ایس ایس کرتے ہیں تب بھی اس میں پولیس یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے گروپ کی ویلیو زیادہ ہے، اس کا میرٹ ہائی جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ پاور اٹیچڈ ہے. پاکستان میں چیزیں پاور ڈریون ہیں بہت زیادہ، لیکن ہمیں کبھی نہ کبھی اس بت کو یا اس مخمصے کو توڑنا ہوگا، اور ہمیں اس کنفیوژن سٹیٹ سے باہر آنا ہوگا. एक बड़ी कन्फ्यूजन पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुमकिन नहीं है। मैं अर्ज़ करूं कि अगर आप यूरोप को देखेंगे तो इन मुल्कों में आपको कारोबार बहुत अच्छे भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ कारोबार करना बनिस्बत यूरोप के अंदर ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के मुकाबले में। इसलिए कि यहाँ के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका कोई कस्टमर रेस्टोरेंट का ये कंप्लेन कर दे कि मैंने इस फला रेस्टोरेंट से खाना खाया और उसकी वजह से मुझे पेट में दर्द है, तो आपको आपके पूरे रेस्टोरेंट को सील किया जा सकता है। आपको ये बताना होगा कि आपने ये सब्जी कब खरीदी थी और आज पकाई है और कल क्यों बेची है। ये चीज़ें यहाँ पे इनका बहुत बड़ा मसला है। उस सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है उन सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ 8 टेबल लगे हुए होंगे, 2 टेबल पे सर्व हो रहा होगा, बाकी 6 या 4 टेबल जो है वो खाली होंगे। बल्कि पाकिस्तान में अगर मुकाबला करें तो पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा हैं। और आप देखेंगे पाकिस्तान में बिजली के बहुत मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन जो अहम तरीन इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं बिजली और गैस हैं, या मज़ीद जो मसाइल हैं अस्पताल अच्छे नहीं हैं, स्कूल अच्छे नहीं हैं या तालीम अच्छी नहीं है। जब ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो इन मसाइल को हल करना ही तो बिज़नेस है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे वहीं पे बिज़नेस होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, किसी ऐसी सोसाइटी में चले जाएं वो मसाइल नहीं हैं, तो वहाँ पे बिज़नेस के मौके कम होंगे, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे कस्टमर कम होगा। मसलन पाकिस्तान में एक जो शहर है उसकी मसलन आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप कई कैश एंड कैरीज या कई सुपर मार्केट्स आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 2 लाख की आबादी के शहर में मेट्रो इतना बड़ा खुला होता है यूरोप के अंदर, और उस मेट्रो में आप जाएंगे, आप 1 घंटा घूमेंगे पूरे मेट्रो में, आपको मुमकिन है 20 से ज़्यादा कस्टमर्स नहीं मिलें। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में जाएँ, जो बड़े शहरों में पाकिस्तान के, इस्लामाबाद में जाएँ या फैसलाबाद में जाएँ, आपको 20 मिनट, आपको 1 घंटे के अंदर पता नहीं कितना कस्टमर मिलेगा मेट्रो के अंदर। तो यहाँ आप ये नज़र करें कि पाकिस्तान में जब कस्टमर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बिजनेस के मौके बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर किसी अंग्रेज़ को, किसी गोरे को यूरोप में से उठा के सेवर फूड्स रावलपिंडी में ले जाएं और वो देखे कि कितने सारे लोग सेवर फूड रावलपिंडी या इस्लामाबाद ब्लू एरिया में बैठ के एक वक्त में खाना खा रहे हैं, तो यहाँ के लोग दंग रह जाएंगे कि यार ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस है। लेकिन अगर आप सेवर फूड की तारीख में जाएंगे तो उसने एक ठेले से शुरू किया था। तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में ये बात भी करेंगे कि ये पाकिस्तान में एक तो ये मसला है कि लोग कारोबार की तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सोशल साइंटिस्ट है, बदकिस्मती से उसने हमारे लोगों को मोटिवेशन नहीं दी है। ज़्यादातर ड्रामे या कहानियाँ डीमोटिवेट करने के लिए बनाई गई, लोगों को हौसला देने के लिए नहीं बनाई गई। हमारे ही मुल्क में जहाँ इतने मसाइल थे, बेरोजगारी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद इतने सारे कारोबार कामयाब भी तो हो रहे थे, लोग अरबों रुपए भी तो कमाए हैं लोगों ने, और ज़ीरो से स्टार्ट किया है। मसलन कई ऐसे लोगों की स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज हम शेयर करेंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, 100 रुपया उनकी जेब में नहीं था, और उन्होंने कारोबार शुरू किया और वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, इतने बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। ऐसे लोग जिनके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए किराया नहीं था, वो आज अरबों रुपए के मालिक हैं। ऐसे लोग के जो मसलन जो चंद हज़ार रुपए की नौकरी करते थे, तनख्वाह लेते थे, वो नौकरियां छोड़ के कारोबार शुरू किया और ज़बरदस्त बिजनेसमैन बन गए। तो हम इंशाल्लाह आइंदा की वीडियोस में इन पे बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त इतना कि हमें कारोबार की तरफ सोचना है और कारोबार की तरफ आना है, इसकी तरफ तवज्जो करना है, और हम जब अपना ज़राए आमदन सोचें तो उनमें जॉब 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 नहीं होना चाहिए, नौकरी 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 या गुलामी गुलामी नहीं होना चाहिए, बल्कि कारोबार होना चाहिए। और जितने भी लोग कारोबार करते हैं उनकी सबसे बड़ी जो रीज़न है या सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ा जो रीज़न है बिजनेस करने का, उनमें से यकीनन पैसा कमाना एक अहम रीज़न है। इससे कोई इनकार नहीं है कि वो पैसा कमा रहे हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह उनकी आज़ादी है, उनकी इंडिपेंडेंस है। वो जब चाहें दुकान खोलें, वो जब चाहें बंद करें, वो जब चाहें जो चीज़ बेचें, और वो खुद मालिक हैं, वो इंचार्ज हैं। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है आज़ादी की, और किसी के ताबे ना होना ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है। जब आप इसको इंजॉय करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना बड़ा एहसास है। तो इंशाल्लाह हम आइंदा की वीडियोस में कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, और उन सक्सेस स्टोरीज के शेयर करने के बाद हम ये बात करेंगे कि कारोबार करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन टू स्टार्ट विद इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू स्टार्ट विद अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और विद हैवी इन्वेस्टमेंट। इसको अपने जहन में एक रुकावट न बनाएं कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं कारोबार नहीं कर सकता, ना, ये ऐसी सोच गलत है। दूसरा, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो सोशल बैरियर है या कल्चरल बैरियर है कि आपकी अम्मी या आपके अब्बू या आपके बहन भाई या आपका ख़ानदान या आपके ससुराल वाले, होने वाले ससुराल वाले जो जिनका इल्म भी नहीं है, वो सब ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि आप MBA करेंगे और उसके बाद टाई लगा के बैंक से निकलेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक बैंक आपका खून निचोड़ेगा और उसके बाद आपको 20-25 हज़ार रुपये दे देगा। ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। अगर इस मसले को हल कर लिया, ये जो कल्चरल बैरियर है इसको अगर हल कर लिया, तो सारे मसाइल, ये बहुत बड़ा बुत है, मैं इसे बुत समझता हूँ। ये अलामा साहब ने कहा था कि कभी जो हुआ मैं सर ब सजदा, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये जो दिल का सनम है, या जो सोच का सनम है, या जो फिक्र का सनम है, जो कल्चर का सनम है, इस सनम को तोड़ें और इस मखमसे, इस कंफ्यूजन या इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आएं। और मैं दोबारा कल वाली बात को रिपीट करूंगा कि लोगों की ज़िंदगी मत गुजारें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपना बिजनेस शुरू करें। मसलन कल हम बात कर रहे थे, हमारा एक दोस्त है, उसका ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस था। मतलब उसने 2 महीने के अंदर अंदर अपना जो परमानेंट क्लाइंट था, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट था, उसका इतना उसने इंक्रीज कर दिया उसका पोर्टफोलियो। लेकिन उसका बड़ा भाई जब भी आता था स्पेयर पार्ट की दुकान पे, तो उसे कहता था कि यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यही करोगे। बहरहाल उसको गुमराह करके, उसको जिस तरह भी तानेबाजी करके उसको यूरोप में भेज दिया, और वो एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का शिकार है, एक क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का शिकार है, यहाँ आके 2 महीने से अस्पताल में पड़ा रहा, और उसके बाद वो अब एक नए मखमसे का शिकार है कि अब मैं अमेरिका जाऊँगा, एक नए कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और अगर वो अब तक कारोबार कर रहा होता तो यकीन कीजिए कि वो अपने उस ऑटो बिजनेस के अंदर, उसके पास वर्कशॉप भी थी, उसके पास स्पेयर पार्ट्स का भी बिजनेस था, और उसके पास इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स थे, तो वो अब तक कई लोगों को रोजगार अता कर चुका होता पाकिस्तान के अंदर। तो हम आइंदा इंशाल्लाह वीडियोस में बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से सक्सेस स्टोरीज हैं, रियल सक्सेस स्टोरीज को शेयर करेंगे, और उसके बाद हम हल देंगे चीज़ों का, जो लोगों के जहन में कन्फ्यूजन्स हैं या जो सवालात हैं या जो मखमसे हैं, उनका हल इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं अल्लाह तबारक व ताला से कि इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश पाकिस्तान में बेरोज़गारी से छुटकारे के लिए, एक कम अज़ कम वो जो अबाबील जो वो अपनी चूंच में कतरा लेके जा रही थी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में थे, एटलीस्ट इतना इफ़ेक्ट इसमें होगा इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत डालेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।